आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की बहुत पुरानी घटना है। एक जमींदार शाम के समय अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक घर के बाहर चबूतरे पर एक बहुत वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं। और शाम चूंकि रात होने वाली थी, अंधेरा घिरने को था। इतने में एक छोटी सी बिटिया घर से बाहर आके और उन वृद्ध व्यक्ति से कहती कि बाबा, रात होने वाली है, अंधेरा घिरने को है और आप अंधेरे में बैठे हैं, आपने रोशनी क्यों नहीं जला ली? आप कहें तो मैं रोशनी जला दूं। वृद्ध बाबा ने तो पता नहीं क्या कहा और आगे क्या चर्चा हुई, लेकिन जमींदार इतनी चर्चा सुन के और बहुत विचार में पड़ गए। वे भी वृद्ध हो गए थे, बेघर वापस लौटे और बहुत अनमने से लौटे। लोगों ने पूछा कि क्या बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आज और मैं तुम सबके साथ हूं, पर सुबह मैंने सोचा है कि मैं अब संन्यास लूंगा, मैं अब अपनी सब आसक्तियों को छोड़कर और उस सच्चाई को पाने के लिए निकल पड़ूंगा। सब लोग बहुत मुश्किल में पड़े कि क्या हुआ, कुछ बताएं तो कि अचानक क्या घटित हुआ। तब जमींदार ने कहा कि आज एक जरा सी बात मैंने सुनी और मुझे लगा कि शायद ऐसे ही तो मैं भी अंधेरे में बैठा हूं और वो छोटी सी बिटिया कह रही है कि बाबा रात घिरने को है, अंधेरा होने को है और आपने अभी तक रोशनी नहीं जलाई। मुझे लगा जैसे उसने मुझसे ही कहा है कि जीवन की शाम घिरने को है और फिर उसके बाद मरण का अंधेरा आए। क्या इसके पहले मुझे अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर लेना चाहिए? क्या मुझे अपने जीवन में रोशनी नहीं पा लेनी चाहिए? इसलिए अब मैं उस सच को, उस रोशनी को खोजने के लिए निकलूंगा। ये तो बहुत छोटी सी एक घटना, लेकिन बहुत बड़ा संदेश जो हम सबको देके जाती है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हम सुबह से शाम तक कितनी घटनाओं से गुजरते हैं, कितने प्रकार की अनुभूति हम अपने जीवन में करते हैं, लेकिन उससे कोई मैसेज अपने लिए, कोई संदेश हम उससे नहीं ले पाते। मैं तो सोचता हूं कि ना किसी शास्त्र की जरूरत पड़ेगी उस दिन, ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, जिस दिन की हम अपने अनुभव से स्वयं शिक्षा लेना शुरू कर देंगे। लेकिन तब तक हमें उन सब की जरूरत पड़ती है, उन शिक्षाओं की जरूरत पड़ती है, उन गुरुजनों की जरूरत पड़ती है जो हमें सहारा देते हैं, हमें रास्ता बताते हैं। लेकिन वो सब कब तक हैं? जब तक हम अपने अनुभव से खुद लाभ नहीं उठा पाते हैं। कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ इस तरह से जिएं कि हर काम हमें कोई ना कोई संदेश दे करके जाए। हम 24 घंटे कोई ना कोई काम में लगे रहते हैं, हमारे मन का काम हो या बेमन का काम हो, करना सब हमें पड़ता है, अच्छे काम हो बुरे काम हो। और मजा यह है कि व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हाँ, ये बात अलग है कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करता हो कि ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है, पर वो जिस काम को अच्छा मानता है या मान के करता है, अगर वो काम अच्छा नहीं है तो वो भी अंदर अंदर से फील करता है कि मैं कर जरूर रहा हूं लेकिन ये काम अच्छा नहीं है। चोरी करने वाला चोरी करता है, उसे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना तो मेरे घर गृहस्थी नहीं चलेगी, लेकिन भीतर भीतर वो भी जानता है कि मैं ये जो कर रहा हूं भले मेरी च्वाइस है पर ये ठीक नहीं है। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हम सुबह से शाम तक कोई ना कोई काम करते हैं, भला बुरा सब तरह का काम करते हैं, लेकिन हम उसे कैसे करें कि वो जो किया गया काम है वही हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, हमें कुछ अलग से ना करना पड़े। क्योंकि हमने देखा है कि पूजा करके भी हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हो पाता, और भगवान का ध्यान करने से स्मरण करने से भी नहीं हो पाता, तब तक नहीं हो पाता जब तक कि हम खाना बनाने के काम को भी ठीक से नहीं करते और दुकान चलाने के काम को भी ठीक से नहीं करते, तब तक हमारा पूजा करने का काम वो काम भी हमारे जीवन को कोई मैसेज नहीं दे पाता। क्या अपन ऐसा नहीं सोचे? सोचना तो चाहिए, क्योंकि हम रोज मंदिर जाने वाले लोग भी वैसे ही हैं जो रोज मंदिर नहीं जाते हैं, उनके जैसे ही उतने ही दुविधा में वे हैं और उतनी दुविधा में हम भी हैं। तब फिर क्या मतलब हुआ हमारा इस तरह के काम करने का जिनको हम भला काम कहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से भले काम छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो भले काम करते हैं उनके करने की स्टाइल क्या है ये हम जान लें, और वो जो मेरे से बुरे काम हो जाते हैं उनको मैं किस तरह करता हूं कि वे मेरे से हो जाते हैं और फिर भी मैं उनसे बच नहीं पाता हूं। क्या ऐसा नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। शायद अपने कर्म के बारे में जरूर हमें सोचना चाहिए कि हम सुबह से शाम तक जो करते हैं, पहली बात कि मैं जो भी करूं वो बहुत सहज हो मेरे लिए। और भैया, कोई भी चीज सहज तब होती है जब उसमें हमारी रुचि होती है। बहुत से ऐसे काम हमें दिन भर में करना पड़ते जो हमारी रुचि के नहीं होते हैं, तब हम क्या करें फिर? आप कह रहे हैं कि कामों को सहज करें, तब तो जो काम मेरी रुचि के नहीं होंगे उनको मुझे बहुत असहज होकर ही करना पड़ेगा। नहीं, बस इतना ही हमें सीख लेना है कि जो काम मेरे मन के नहीं है वे काम भी मुझे रुचि से ही करना है। अब बहुत मुश्किल में डाल रहा हूं आपको, आप देखते जाइएगा कि किस तरह हम इन सब चीजों से बाहर एकदम आकर के खड़े हो जाएंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे करना चाहिए। थोड़ी सी तो उलझन लगेगी शुरू में, अभी तो हमने डिसाइड ही नहीं किया कि हम कौन सा काम करेंगे, और हमने तो ये पहले तय कर लिया है कि जो भी करेंगे बहुत सहज रूप से करेंगे, और जिन चीजों में हम बहुत असहजता महसूस करेंगे उन कामों को थोड़ा स्थगित कर देंगे अगर संभव हो सका तो, वरना उनको अगर करने की मजबूरी है तब उनको हम सहज रूप से करेंगे। जैसे मन नहीं है कि हम खाना बनाएं, कई बार होता है घर में बहू को बोले अगर कि आज खाना बना लो, नहीं हमें फुर्सत नहीं है, हमारा मन नहीं है। बिटिया को बोलती है मां कि तू खाना बना ले, नहीं बनाती नहीं, मुझे पढ़ना है आज। अब बताइएगा तो कौन बनाए फिर, बनाना तो पड़ेगा। अब दो स्थितियां हैं, सामने दिख रहा है कि और कोई बनाने वाला नहीं है और बनाना जरूरी है और मन बिल्कुल भी नहीं है, तब फिर क्या करें? बनाओ, लेकिन रोते चीखते चिल्लाते मत बनाओ। जब मुझे आज रसोई बनाने का काम आया ही है तो मैं क्यों ना इस तरह से बनाऊं कि मैं मुझे भी उस काम में आनंद आए, और जो लोग उस काम से लाभान्वित होने वाले हैं वे भी हर्षित हों, उनको भी आनंद आए। बस हमने एक सूत्र ढूंढ लिया कि मैं अपने कामों को बहुत सहज रूप से तभी कर सकता हूं जब मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ करूं, पूरी रुचि के साथ करूं, और उससे जिन लोगों को लाभ मिलेगा वो भी आनंदित तभी हो पाएंगे जब मैं उस काम को बहुत रुचि से करूंगा। हम लोग तो भगवान का नाम भी गिन गिन के लेते हैं, पूछ लेते हैं कितनी बार लेना है। और विनोबा से अगर कोई कहता था कि आपका नाम लिख लें, कितनी बार आप राम का नाम लोगे, तो वो बोलते थे मेरा नाम मत लिखो, मुझे जितनी बार लेना होगा। तो अब ये भी तय करूं कि इतनी बार नाम लेना है, नहीं नाम लेना है यानी लेना, अब मैं कितनी बार लेऊं। लेकिन हम अच्छे कामों में भी इस तरह से और सहज नहीं हो पाते हैं। ये जो कंडीशन हम लगा देते हैं, मुझे तो काम करना है, क्या मुझे आज ही रसोई बनानी है, सुबह की शाम को ही बनाना पड़ेगी क्या, इसकी चिंता क्यों। छोटे बच्चों से पूछो वो कितनी सहजता से करते हैं, कभी उनके सामने रेत का ढेर मिल जाए, किसी के यहाँ मकान बनने आई हो, फिर जरा देखो उनका मकान पहले बनना शुरू हो जाता, आपका तो बाद को बनेगा उस रेत से, पर उनसे कोई पूछे कि क्या करोगे, बुद्धू हो, मिट जाएगा, वो मजे से कहते हैं कि बनाऊंगा भी मैं और जब लौटने लूंगा तो मिटाने का मजा भी मैं लूंगा, तुम क्या जानो, तुम तो बजाने का मजा भी नहीं जानते, मिटाने के भी नहीं जानते, हम तो काम करने का मजा जानते हैं। वो बनाते हैं बड़े उससे, पैर लगा करके तब थोड़ करके उसमें, और फिर कहां पर खिड़की लगानी है और कहां पर दरवाजे लगना, और फिर अगर किसी बिटिया ने बनाया है, बहन बना रही है, तो भैया उसमें कहता है कि तुम्हारे उसमें चौका कहां प्लान किया तुमने, तो वो रसोई भी बना देती और उसमें एक ठो सिंक लगा देती कि ये धुआं निकलने का स्थान, सब कुछ एकदम तैयार, और फिर उसके बाद दोनों खेल रहे हैं, मजा ले रहे हैं, कितने सहज रूप से कर रहे हैं वे। और माँ ने आवाज दी, चलो तो खाने का समय हो गया। अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्या मामला है, तो वो उसके में लात मारता और ये इसके में लात मारता और दोनों गले में हाथ डाल के वापस, जितनी देर बनाया उतनी देर कोई चिंता नहीं की कि क्या पता बना रहेगा कि नहीं, कि कोई आके मिटा तो नहीं देगा, और इसमें रह करके मुझे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता मेरे जाने के बाद इसमें कौन रहेगा, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे होने से पहले भी इसमें कोई रहता था, मेरे चले जाने के बाद भी कोई रहेगा, मैं जब तक रहूं ठीक ढंग से क्यों ना रहूं, मैं इस सोच में क्यों मरूं कि आगे कौन इसमें रहेगा और मेरे मन पसंद का रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं जिस काम को भी, मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि मैं जिस काम को करूं उस काम को इतने आनंदित होकर, इतने सहज रूप से करूं, बहुत हार्दिक होकर के करूं। हम जिन कामों को बहुत हार्दिक होकर करते हैं वे काम हमें भी आनंद देते हैं। विनोबा एक जगह लिखते हैं कि हार्दिक होकर किए गए अच्छे कामों का फल अनंत गुना हो जाता है। वे ही काम जो कि हार्दिक होके, और जो हार्दिक होके नहीं किए जाते उनका फल लगभग शून्य ही होता है। जैसे एक कागज का टुकड़ा है, उसको ले जाइएगा कि 10 रुपए में ले लो, ये 100 रुपए में ले लो, कोई नहीं लेगा। उस पर मोहर लगी हो, उस पर हार्दिकता हो, उस पर भावनाएं की मोहर लगी हो, तो वो 10 रुपए में भी और 50 रुपए में भी हो, जितने रुपए की मोहर लगी होगी, जितनी जबरदस्त आपकी भावना होगी उतना ही वो कागज का टुकड़ा जैसे कि कीमती हो जाता, उसने ही हमारा कर्म भी कीमती हो जाएगा जितना कि हार्दिक होगा। हार्दिक कर्म कौन करता है, मां अपने बेटे को पालते समय करती है। आप उस किए गए काम को थैंक्स कह के और उसका बदला नहीं चुका सकते। कोई मां अपने बेटे को छोटा सा करके बड़ा करे और आप बेटा थोड़ा बड़े होके कहे कि थैंक्स, क्या आप उतने से उसको माफ सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर कोई एक नर्स आपने लगाई है अपने बेटे की सेवा में, तो सुबह से शाम तक वो काम करेगी और आप शाम को कहें कि थैंक्स नर्स, और तुम्हारा पेमेंट वो ले लेगी, वो उत्ते से चुकता हो गया सुबह से शाम तक का काम। लेकिन माँ को शाम को थैंक्स और कुछ रुपए देकर के आप उसके काम का आकलन नहीं कर सकते, दोनों के काम में बहुत फर्क है। माँ ने बेटे की परवरिश बहुत हार्दिक होके की, इसलिए वो काम बहुत वजनदार है। लेकिन किसी काम वाले को लगा करके आपने काम करवाया है, उसमें उसने अपने 2 पैसे कमाने के लिए किया, उसमें हार्दिकता नहीं है। हम लोग छोटे छोटे घर गृहस्थी के काम करते हैं। एक बहन अपने भाई को गोद में उठाए और चली जा रही है, पहाड़ चढ़ रही है, शिखर जी की वंदना कर रही है मान लो, और उसमें एक व्यक्ति पूछता है कि अरे तू इसको नीचे उतार दे, तब बोझा लेकर के काय को ऊपर चढ़ रही है, थक जाएगी। तो मालूम वो उसको कैसे देखती है कि क्या कह रहे हो, बोझा मेरा भैया है, भैया मैं लेकर के जाऊंगी ऊपर तक, उसको बोझा नहीं मालूम पड़ रहा। लेकिन उतने ही वजन का अगर आपके लिए कोई बैडिंग अपना दे दे, अटैची दे दे, तो आपको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दूर जाने के बाद लगेगा इस हाथ से उस हाथ में, उस हाथ से इस हाथ में, कहीं भी पटक दे, में क्या करें बताइएगा, उतना ही वजन लेकर के। ये कर्म करने का हमारा ढंग होना चाहिए। हार्दिकता और बहुत इजीनेस, जिसको हम सहजता कहते हैं, ठीक ऐसा ही हमारा कर्म हो। सूरज सुबह उगता है, वो बहुत सहज रूप से उगता है, उसके पहले वो ये डिसाइड नहीं करता या कि लोगों से नहीं कहता कि जागोगे कि नहीं मेरे उगने से तुम, और कितने कमल खुलेंगे, कितने लोग जागेंगे, और कहां कहां लोग मेरा लाभ लेंगे, ऐसा विचार ही नहीं करता। हार्दिक कर्म जब भी हम करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। शांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ठीक उसी तरह से हम क्यों नहीं कर्म को करें कि मेरे अपने आनंद के लिए कर रहा हूं, हार्दिक होके और बहुत सहजता से कर रहा हूं। आप देखेंगे कि कर्म करने का आनंद भी मिलता है और दूसरे को उससे लाभ भी पहुंचता है। लिखा तो यही है कि एक्ट मस्ट बी टोटल, जो करें उसमें किसी फल की आवश्यकता, या मुझे ऐसा ऐसा फल मिलेगा, वो तो जो मैं करूंगा अच्छा करूंगा तो फल मुझे अच्छा ही मिलने वाला है, और मैं अगर बुरा करूंगा तो बुरा फल मिलने वाला है, मैं इसके लिए निश्चिंत रहूं। मैं अच्छा करके बुरा फल पाऊं ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं बुरा करके और अच्छे फल की आकांक्षा करूं तब भी नहीं मिलने वाला है। और शायद इसीलिए लिखना पड़ा है गीता में कि कर्मण्यवादी कस्य मा फलेषु कर्माणि एव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, फल पर मेरा अधिकार नहीं है, वो तो पहले से डिसाइड है कि मैंने अच्छा करा है तो रिटर्न अच्छा होने वाला है। मुझे उसकी चिंता उस कर्म करते समय करने की आवश्यकता ही नहीं है। कई लोग तो कर्म करते हैं और करने से पहले ये विचार कर लेते हैं कि मेरे ऐसा करने का लाभ होगा कि नहीं, अगर होगा लाभ तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं। और यही तो हमने धर्म के मामले में लगा लिया। हम पूछते फिरते हैं कि महाराज वो जो पूजा करेंगे उससे क्या लाभ मिलने वाला, वो जो ध्यान करेंगे उससे क्या लाभ मिलने वाला, और शास्त्र स्वाध्याय से क्या लाभ मिलने वाला। हम पूछते भले ही नहीं हो पर भीतर मन ही मन तो ये सोच के जाते होंगे मंदिर के, आज जब मैं मंदिर के मैं प्रणाम करके निकलूंगा तो हो सकता है कि बेटा दौड़ के आएगा और कहेगा कि आपका प्रणाम सफल हो गया, नेट 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इधर मैं पूजा करके बाहर निकलूंगा और शायद बेटा दौड़ करके आएगा कि बहुत अच्छा, थोड़ी देर और कर लो, अभी 1,00,000 गिरे हैं, 1,00,000 और गिरने वाले हैं, थोड़ी देर और कर। हम तो शायद पूजा करते कहते नहीं है हम ऐसा जैसा मैं कह रहा हूं, ऐसा कौन कहेगा, नहीं तो बुद्धू समझा जाएगा। पर हमारे अंदर तो ऐसा ही रहता है कि मैंने ये किया झट और उधर मुझे, मैं पहले से सोच लेता हूं। और बच्चे लोग क्यों निश्चिंत होके और आनंद लेके कर्म करते हैं, और हम क्यों उस फल की चिंता करके और उस कर्म को भी उसके आनंद को भी नष्ट कर देते हैं। पहली बात कि हम दिन भर हमें कर्म तो करने ही है, झाड़ू लगाना भी एक काम है। विनोबा से जब झाड़ू लगाते थे लोग पूछते थे कि आप काहे को इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ झाड़ू लगाने में टाइम वेस्ट ही तो होता है, लोगों तो कहते ही ऐसे ही लगता, अपने कपड़े धोने में लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई चाहिए उनको कपड़ा धोने वाला, अपने घर की साफ सफाई करने में, अपने कुछ दिन के बाद तो शायद, और भी मैं नहीं कहूं उस चीज को रहने, वो बहुत नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसी बात काहे को कह रहे हैं महाराज जी, पर वो जानते सब हैं। इन सब कामों में हमें ऐसा लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर विनोबा से जब पूछा जाता था कि आप अपने कमरे में झाड़ू क्यों लगाते हैं, इतना समय आप भगवान की प्रार्थना में लगाएं तो ज्यादा सार्थक होगा, वो कहते हैं कि मुझे तो कमरे में झाड़ू लगाना भी भगवान की प्रार्थना के बराबर ही लगता है। क्यों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना छोड़ करके झाड़ू लगाना शुरू करें, नहीं तो आप मेरे इसका अर्थ ये ले रहे हैं, नहीं जबकि झाड़ू लगाना जरूरी हो गया है तब की बात कर रहा हूं कि मैं अपने कमरे में झाड़ू लगाता हूं, वो कहते कि मुझे लगता मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि भगवान ने यही तो कहा है कि जितना भी मलिनताएं हैं, जितनी भी गंदगी है उसको बुहार के बाहर फेंक दो। जब जब मैं कमरे की गंदगी बुहार के बाहर फेंकता हूं, तब तब मुझे याद आ जाती कि मुझे अपने भीतर की ऐसी गंदगियों को बुहार करके बाहर फेंक देना। यही तो भगवान की प्रार्थना है, यही तो मुझे करना है। जब नाई से पूछा जाता है कि क्यों भैया तुम अपना ये जो नाई का काम करते हो इसमें आनंद पाते हो, बोले बहुत आनंद पाता हूं। तो करते कैसे हो? तो बोले मेरे यहां तो कोई भी आ जाए, जब मैं उसके बाल बनाता हूं तब मैं ध्यान रखता हूं कि जैसे इसके सिर की गंदगी उठा करके हटा करके बाहर फेंक रहा हूं, ऐसे ही मुझे भी अपने सिर में कोई गंदगी भर गई हो तो उसको हटा करके बाहर फेंकना। दिन भर में बहुत सी गंदगी मैं अपने सिर में भर लेता हूं, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे से ईर्ष्या, दुनिया भर की गंदगी अपने माथे में इकट्ठी करता हूं, वो भी मुझे हटाना है। दूसरे के सिर की गंदगी तो बहुत हटाई दिन भर। और जब किसी वैश्य से पूछा जाता है कि भैया तराजू तौलते समय तुम बड़े प्रसन्न मालूम पड़ते हो और इस काम में तुम्हें आनंद कैसे आता है, तो बोले भैया आनंद इसलिए आता है कि चाहे छोटा सा लड़का आवे, चाहे बड़ा आदमी आवे, चाहे गरीब आए, चाहे अमीर आवे, मुझे तो उस पे ध्यान नहीं है, मुझे तो अपनी तराजू की डंडी पर कि ये इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, बस मुझे इसमें आनंद। बताइए जो इस तरह से काम करेगा वो तो आनंदित हो गई, और अगर डंडी थोड़ी टेढ़ी कर दी है तो भले ही बाहर दो पैसे ज्यादा आ जाएंगे लेकिन भीतर आनंद नहीं बरस पाएगा उस काम का। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं, कितना सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, घर गृहस्थी का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम भी करते हैं और सामायिक और ध्यान धर्म ध्यान भी करते हैं, लेकिन सब चीजों को करने का अगर स्टाइल नहीं मालूम हो तो शायद वे सारी चीजें हमें कोई आनंद नहीं दे पाती, वरना तो सब चीजें हमें आनंद दे सकती हैं। अब मुश्किल ये मैंने आपके सामने खड़ी कर दी कि किसी भी काम को सहज रूप से करें तो चोरी भी सहज रूप से करें, झूठ भी सहज रूप से बोलें, हार्दिक होकर के बोलें, बहुत प्रसन्नता महसूस करके बोलें झूठ बोल करके, क्या आप ऐसी कोई सलाह दे रहे हैं? नहीं, मैं ऐसी कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। मैं उसके साथ में ये भी जोर देना चाह रहा हूं कि मैं दिन भर में ये ध्यान रखूं कि वे ही कर्म करूंगा जिनसे कि मेरा और दूसरे का कल्याण होता हो। कर्म को डिसाइड कौन करेगा? स्वपर कल्याण ही। कर्म कौन सा करने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, ये डिसाइड करेगा स्वपर कल्याण। बस फिर देख लीजिएगा, जिससे कि मेरा भी हित हो और दूसरे का भी हित हो। मैं ऐसा काम भी नहीं करूंगा जिससे मेरा तो हित हो और दूसरे का अहित हो। मैं ऐसा काम करने थोड़ा बहुत तत्पर हो जाऊंगा जिसमें दूसरे का हित होता हो, मेरा थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होता हो, कोई बात नहीं, परोपकार करने में थोड़ा सा मुझे अगर अपने ऊपर कुछ लेना पड़ता हो तो मैं वो भी स्वीकार कर लूंगा, पर दूसरे का उपकार होता हो ऐसा ऐसा मुझे त्याग करना पड़े तो त्याग भी कर दूंगा दूसरे के उपकार के लिए। मुझे छोड़ना पड़े, मुझे थोड़ी असुविधा हो जाए तो भी असुविधा भोग लूंगा पर दूसरे के उपकार के लिए। अगर हम ऐसी भावना रख के कर्म करेंगे तो फिर हमारा अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि कौन से कर्म हम हार्दिक होके कर पाएंगे, जिनमें उन्हीं कर्मों में हार्दिक हुआ जा सकता जिसमें मेरा और दूसरे का दोनों का कल्याण हो, वे ही कर्म मैं करूं। और ये मेरी कसौटी है कि मैं जब जब भी कोई काम करूंगा उसमें यह ध्यान रखूंगा कि उससे मेरा हित होता है कि नहीं होता, दूसरे का हित होता है कि नहीं होता, और वैसे काम नहीं करूंगा जिससे दूसरे का अहित होता हो। तब तो फिर मेरे काम करने का ढंग ही बदल जाएगा, बहुत आसानी से मैं इस संसार में कार्य कर सकूंगा और वे कार्य करते हुए भी, और मैं संसार से पार हो सकूंगा। कह सकता हूं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, लेकिन कितने दिन बैठे रहेंगे भैया हाथ पे हाथ धरे? करना तो पड़ेगा, और करने के लिए दो ही हैं, अच्छा और बुरा। अच्छे और बुरे को कौन डिसाइड करेगा? वो मेरे पास कसौटी है कि अच्छे काम वे हैं जिनमें मेरा और दूसरे का कल्याण होता हो, और वे सब काम अच्छे नहीं हैं जिनमें कि मेरा भी और दूसरे का भी अहित होता हो। अब जो कुछ मेरे हित में है और दूसरे के हित में है उसको मैं हार्दिक होके क्यों ना करूं। ये मैंने पहले ही समझ लिया कि मुझे जो भी करना है वो हार्दिक होके ही करना है। वे ही काम हार्दिक होके किए जा सकते हैं जिनमें स्वपर और कल्याण होता है, जिनमें दूसरे का हित होता उनको हार्दिक होके कोई कर ही नहीं सकता। कहने में जरूर संभव है लेकिन हो ही नहीं सकता। किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचा के हम जो सुख पाते हैं वो सुख हो सकता है, हित तो नहीं हो सकता। झूठ बोल करके हम थोड़ी देर को सुखी हो सकते हैं लेकिन वो कल्याण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कल्याण और सुख में बहुत अंतर है, हित और सुख में बहुत अंतर है। जिन चीजों में सुख मालूम पड़ता है जरूरी नहीं है कि उनमें मेरा हित होता हो, और जिन चीजों में हित होता है जरूरी नहीं है कि उनमें सुख प्राप्त हो ही। ऐसा है ये गणित। मैं अपने सुख को साधने के लिए दूसरे का अहित ना करूं, यह भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपना हित साधने के लिए दूसरे का अहित कर ही नहीं सकता। जो अपना हित साधने में लगा उससे दूसरे का अहित नहीं हो सकता, जो अपने कल्याण में लगा है उससे दूसरे का कल्याण हो ही नहीं सकता। हाँ ये जरूर है कि जो अपने सुख के सामान जुटाने में लगा है वो दूसरे को दुख जरूर पहुंचा सकता है। आचार्य महाराज इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि परोपकार में भी अपना कल्याण छिपा है और अपने कल्याण में भी दूसरे का कल्याण छिपा हुआ है। बहुत आसान सा उदाहरण है। जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पानी बरसे, तो क्या प्रार्थना ऐसी करते हैं कि मेरे खेत में बरसे बाकी में नहीं बरसे? नहीं, पानी बरसे, सब दूर बरसे। तो हमने प्रार्थना तो ऐसी करी कि पानी बरसे और सबके खेत में बरसे, तो अब सबकी फसल भी हम ही काट लें क्योंकि हमने प्रार्थना करी थी। नहीं, फसल हम अपने ही खेत की काटते हैं लेकिन प्रार्थना क्या करते हैं सबके, बताइएगा। इससे ज्यादा कोई समीचीन, इससे ज्यादा कोई सम्यककारी हो सकता है? हम भावना भाते हैं सबके कल्याण की, होता हमारा ही कल्याण, या कि अपने कल्याण की भावना भाते हैं तब भी जो है होता सबका कल्याण है। अपने कल्याण के लिए भावना भाई थी कि पानी बरसे लेकिन सबका कल्याण हुआ, और सबका कल्याण सबके लिए पानी बरसा है तब मेरा कल्याण हुआ हो, ऐसा नहीं है, मेरे खेत में भी बरसा है। दोनों तरह से हम देखें तो क्यों ना हम इस तरह से काम करें, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। सुख के लिए तो दिन भर जुटाते हैं, शरीर के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं। चोरी भी करता है कोई अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने सुख सामग्री जुटाने के लिए करता है, ये डिसाइड हो गया कि कर्म अपने सुख पूर्ति के लिए नहीं। पांचों इंद्रियों और मन के सुखों की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनकी चर्चा तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो उसकी चर्चा कर रहा हूं, उस कर्म की चर्चा। वास्तव में कर्म वो है जिससे कि स्वपर कल्याण होता, और ऐसा कर्म भी हार्दिक होके किया जाए, सहज होके किया जाए, भावनात्मक होकर के किया जाए, तभी जो है वो कार्यकारी होता है। हम लोगों के साथ यही मुश्किल है कि कार्य तो करते हैं, अच्छे कार्य भी करते हैं, पर हम भावनात्मक होकर के या हार्दिक होकर पूरी रुचि के साथ नहीं करते हैं, तब फिर वे कर्म हमें आनंद नहीं देते। फिर चाहे वो स्वाध्याय हो, फिर चाहे वो पूजा हो, या कि घर में रोटी बनाना हो। अब हमारे जी खो जर रोटी बना भी डरी है, नहीं भाई बनाना है मुझे ताकि चार लोग आएंगे और वो खाएंगे और वे सुख में वे अपना कल्याण करेंगे। वे सुख तो महसूस करेंगे ही लेकिन वे अपना कल्याण भी करेंगे, ऐसी भावना से नहीं बनाई जा सकती क्या? रोज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते हैं, काय के लिए बोलते हैं, अकेले बोलने के लिए नहीं बोली जाती। महाराज के सामने, महाराज मैंने ये जो फूड हैंडल किया है उसको बनाते समय मैंने किसी से कोई अपशब्द नहीं बोले हैं, मैंने अपनी भावनाओं को कलुष नहीं होने दिया है इस भोजन को बनाते समय, इसलिए ये भोजन बनाना भी मेरे लिए पुण्य का काम हो गया, नहीं तो सिवाय पाप के इसमें कुछ नहीं होता। मैं अपने उस कार्य को पुण्य में कन्वर्ट कर लेता हूं अगर मैं उसमें अपनी भावनाओं को पवित्र रखता हूं, जबकि सांसारिक कोई भी कार्य हो वो सिर्फ पाप बंध के लिए कारण बनते हैं, लेकिन उनको भी मैं पुण्य में कन्वर्ट कर लेता हूं। वही भोजन मैं स्वयं भी करूं और अपने लिए सिर्फ इंद्रिय के विषयों की पूर्ति के लिए बनाऊं, उस भावना से बनाऊं, तो उस भोजन का सारा पाप जो है मेरे मत्थे है। और अगर उसी भोजन को त्यागी व्रती आएंगे, कोई अतिथि आएंगे और वे इससे अपना धर्म ध्यान करेंगे, इसलिए मुझे बहुत हार्दिक होके बनाना है, पूरी पवित्रता से बनाना है। पर बताइए, देखिएगा, कर रहे थे काम अपवित्रता का, लेकिन भावनाएं कितनी पवित्र हैं, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाते और दूसरे के लिए लाभान्वित करते। ऐसे बहुत से उदाहरण जो अपने जीवन में अपन देखें। और एक आखिरी बात मुझे जो आपको एक उदाहरण से समझा देनी है कि चाहे पूजा पाठ भी क्यों ना हो, अगर हार्दिक और भावनात्मक नहीं है तो फिर वो हमारे जीवन को सुख तो दे ही नहीं पाता, शांति तो दे ही नहीं पाता, हमारा हित भी नहीं कर पाता है। हमें क्यों नहीं मिलती है सुख और शांति इतने धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी? क्यों नहीं एक इनर फुलफिलमेंट, क्यों नहीं एक आत्मसंतोष हमारे जीवन में आ पाता है? मैंने देखा है तीन तीन संध्याओं में लोग संध्या वंदना करते हैं और सामायिक करते हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या उनके जीवन में समता आ पाती है? वर्षों वर्षों पूजन करते हो जाने के बाद भी क्या संसार की आकांक्षाएं मिट पाई हैं? अभी उन्हीं में सुख मालूम पड़ता है। इसके मायने यह है कि मैंने अभी पूजा का आनंद लिया नहीं, असल अभी मैंने भगवान की संध्या वंदना का आनंद नहीं लिया है, इसलिए मुझे और दूसरे चीजों की जरूरत पड़ रही है और दूसरे चीजों की आकांक्षा है, वरना मेरी आकांक्षा नष्ट हो जानी चाहिए। मैं तो ऐसा सोचता हूं, मेरा कर्म उसी समय मुझे फल दे देता है जब मैं उससे करता हूं, बात को तो मुझे फल देता ही है, पर जिस समय मैंने किया, जिस समय मैंने पूजा करी और पूरी भावना से की, मुझे बहुत आनंद मिला। एक घंटे के लिए मैंने स्वाध्याय किया, मैंने महाराज का प्रवचन सुना, एक घंटे तक मुझे बहुत आनंद आया, बस मेरे वो क्षण सार्थक हो गए। इसके बाद क्या होगा मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। क्या ऐसा हम अपने कर्म को इस तरह से नहीं कर सकते? कर सकते हैं भैया, असंतुष्ट होकर के भी कर्म किए जाते हैं और संतुष्ट होकर के भी कर्म किया जा सकता है। कर्म तो करना ही है, सुबह से शाम तक गृहस्थ को भी करना है, साधु को भी कर्म करना पड़ते हैं। पर मैं फिर आपसे कहूं कि भावनात्मक और हार्दिक होकर करें। और एक आखिरी घटना आपको सुनाऊं, शायद ये टॉल्स्टॉय की कहानी है, इंग्लिश की, द किंग ऑफ नाइट, रात्रि का देवता, जिसने कि एक बहुत बड़े मंदिर के पुरोहित को स्वप्न आया था, पंडित को स्वप्न आया कि देवता आएंगे मंदिर में दर्शन देने के लिए, भगवान आएंगे दर्शन देने के लिए। सहसा अगर किसी भक्त से कहा जाए कि भगवान आएंगे दर्शन देने, तो पहली बार में क्या होता है, अरे ऐसे आते हैं क्या? पहली बार में तो यही आएगा मन में, ऐसे आते वाते कोई है क्या? और उसके मन में भी जब उसने स्वप्न देखा तो सुबह उसको हंसी आ गई कि क्या बेहूदा स्वप्न देखा था, कि सपने भगवान कह रहे हैं कि मैं फलाने फलाने दिन रात 12 बजे आऊंगा, ऐसा हुआ है कभी? उसे सपने स्वप्न पर स्वयं विश्वास नहीं हुआ, उसने किसी से नहीं कहा, लेकिन दूसरी रात फिर वही स्वप्न आया। अब उस पंडित को थोड़ा मन में लगा कि हो ना हो सच्ची में आ गए, तो फिर चार लोग कहेंगे कि बताया तक नहीं, अब तो बता देना चाहिए। उस मंदिर में 30-40 पंडित और पुरोहित थे। देखो, पंडित और पुरोहित कोई बैठे हों तो बुरा नहीं मानना भैया, मैं तो सिर्फ कहानी सुना रहा हूं, वो भी टॉल्स्टॉय की, इंग्लिश की नहीं, तो आप कहो कि। तो उसने और पंडितों को मीटिंग बुलाई, हाँ अब तो सब मंदिरों में ऐसे ही काम चलता है, एक आदमी से थोड़ी चलता है, मीटिंग बुलाना पड़ती है, फिर सबसे तय होता है कि करना है कि नहीं करना। भगवान भी अगर आ रहे हैं तो मंदिर की सफाई करनी कि नहीं, ये ट्रस्टीज से कमेटी बुला करके और फिर सलाह लेना पड़ेगी। भगवान हमारी गिरफ्त में है, हमारे बिना तो मंदिर का पत्ता नहीं हिल सकता, हम ट्रस्टी हैं मंदिर के। देखो आप, मजा देखो हम लोगों का, हम लोगों के कर्म करने का ढंग देखो। करने गए थे भगवान की सेवा और बनके बैठे हैं भगवान के मालिक। हाँ, मैं तो ऐसे ही बीच बीच में छेड़ देता हूं, आपको थोड़ा सा बुरा लग जाए मेरी बात का, लग ही नहीं रहा आपको, इतने दिन कह रहा नहीं महाराज सब अच्छी बात कहते हैं, हम सोचते थोड़ा बुरा हो रहा तो लग जाए, लग ही नहीं रहा। क्या रख दिया? ठीक, तो मीटिंग बुलाई गई और 30-40 वो पुरोहित और पंडित सब बैठे और उसने अपना सपना सुनाया तो सबने ठहाका लगा के हंसे कि क्या जरूरत थी इस सपने को बताने की, ऐसा कभी मंदिर में हुआ ही नहीं। भगवान की मूर्ति की पूजा करो, साक्षात भगवान। अगर कभी रास्ते में भगवान मिल जाए और कहें कि हम भगवान हैं तब भी मालूम हम शायद इनकार कर देंगे, हम कहेंगे वहां हम दर्शन करके आए, छोड़ो तुम बुद्धू मत बनाओ। ऐसे ही उनके मन में आ गया, मैं किसी साक्षात सिद्ध शिला से उतर के आने वाले भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो जीता जागता भगवान सबके भीतर बैठा है वो रोज हमारे सामने आता है और हम उसको इग्नोर करते हैं। वो जो हमारे भीतर बैठा हुआ उसको भी हम इग्नोर करते हैं, उसको भी हम अनदेखा करते हैं, उसकी भी अंतरात्मा की हम सुनना नहीं चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इसको आप ऐसे ले लीजिएगा, भगवान भगवान आता हो या नहीं, नहीं तो आप एक क्वेश्चन शाम को रख दें कि क्या सिद्ध भगवान हमारे बुलाने पर आ जाएंगे क्या, आपका तो ऐसे ही है उतना ही मालूम है आपको, बंधा बंधाया हिसाब। लेकिन मेरे भीतर भी वो सिद्ध बनने की सामर्थ्य है और हम सबके भीतर अनंत बनने की सामर्थ्य है, उसका कभी ख्याल नहीं आता है। वो हमें रोज सपने में कहता होगा कि तुम्हारे भीतर बैठा हूं, कभी खबर ले लिया करें, हम आने वाले हैं आज रात 12 बजे, तो हम विश्वास नहीं करेंगे सहसा। और उनने भी किसी ने विश्वास नहीं करा, पर जब तीसरे रोज फिर सपना आया उस पुरोहित और उस पंडित को, तो उसने कहा कि अब तैयारी तो कर ही लेनी चाहिए, जब भगवान खुद अपने सपने में आके कह रहे हैं कि मैं आने वाला हूं फलाना फलानी रात 12 बजे आऊंगा। और जब बड़ा पुरोहित मंदिर की साफ सफाई और तैयारी कर रहा है तो सबने कहा अपन भी करो, अब सब तैयारी कर रहे हैं, भगवान आएंगे इस बात की सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विश्वास किसी को नहीं है कि भगवान आएंगे। सब काम में लगे हैं, सफाई का काम चल रहा है, बड़ी जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, व्हाइट वॉश किया जा रहा है, फर्श धोए जा रहे हैं, बर्तन मले जा रहे हैं, भगवान की मूर्ति को भी साफ सुथरा बनाया जा रहा है। भगवान आएंगे, देखेंगे कि कैसा पड़ा हुआ है मंदिर, जरा साफ तो कर लो। और वो दिन भी आ गया, सबकी ड्यूटी बांध दी गई कि सुनो पूरी रात तो कोई नहीं जग पाएगा, लेकिन एक 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 घंटे सब जागेंगे, पता नहीं कब आ जाएं, वैसे आना वाना तो नहीं है पर पता नहीं कब आ जाएं, है ना। अंदर तो मन तो यही कह रहा है कि आना वाना तो है नहीं, पर फिर भी अगर सच्चा निकल गया भाई हो सकता है, मे बी पॉसिबल, संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए तैयारी भी है और सब जाग रहे हैं। एक एक घंटे जैसे तैसे करके 10 बजे तक तो बहुत लोग जगे, फिर 10 से 11 जगने वाले लोग, 11 से 12 और 12 बजे जगने के लिए तो बड़े पुरोहित को ही तय किया गया कि तुम्हें ही आया है सपना, तुम्हें ही जगो 12 बजे। हाँ बड़ी मजे की घटना है, वो उन्होंने बहुत मजा लेके लिखी है कि हम कितने प्यारे लोग हैं, हम कितने अच्छे लोग हैं, हमारी प्रशंसा में लिखी है, हमारे कर्म करने के ढंग बताए हैं कि हम कर्म करते भी हैं लेकिन हार्दिक होके भावनात्मक होके नहीं करते हैं, पूरे विश्वास के साथ नहीं करते हैं, अपने आनंद के लिए नहीं करते हैं। और 12 बजे हल्की हल्की सी नींद लगने वाली थी बड़े पुरोहित की कि उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो कि खोलो मैं आ गया। उसे लगा कि ऐसा कहीं होता है क्या, नींद तो इतनी आ रही है कौन उठे। उसने छोटे अपने मातहत वाले पंडित से कहा कि सुनो दरवाजा खोल दो, आवाज आ रही है। तो दूसरे वाले ने कहा कि तुम ही खोलो ना जा करके, मुझे तो बहुत जोर से नींद लग रही है। जब उसने देखा कि बड़े पुरोहित नहीं जा रहे हैं और मैं उनसे छोटा पुरोहित, तो उसने अपने से छोटे वाले पुरोहित से कहा कि तू जाना खोला दरवाजे, लेकिन उठा कोई नहीं। उसके बाद जो है दरवाजे अपने आप खुल गए हैं, ये भी आवाज आ गई, किसी ने खोले होंगे, सीढ़ियां चढ़ने की भी आवाज आई, रथ बाहर रुका है इसकी भी आवाज आई, सब कुछ हुआ, लेकिन कौन उठ करके जाए और देखे, सबको नींद आ रही थी। जब रामचंद्र जी तमिश्रा के घाट पर रात बिताने के लिए रुक गए थे और सारी प्रजा वहीं पर डेरा डाल के रुक गई थी, कि हम अपने भगवान को छोड़ करके अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे, पर सुबह रात निकलने से पूरी होने से पहले ही 4 बजे उठ के रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी को जगा के कहा था कि चलो इससे पहले कि उजाला हो निकल चलो, नहीं तो ये सब हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और सब लोग निकल गए थे नदी पार करके, तमिश्रा के उस पार पहुंच गए थे। तब सुबह जब लोग जागे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि धिक्कार है इस अंधकार को, धिक्कार है इस रात्रि को जिसने मुझे मेरे भगवान से विलग कर दिया, धिक्कार है मेरी इस निद्रा को, धिक्कार है मेरी इस भाव शून्यता को। ऐसा हम कभी नहीं कह पाते कि हमारे भगवान से, अगर हमारे अपने भीतर बैठे हुए भगवान से किसी ने हमें विलग और दूर बना के रखा है, तुम्हारी अपनी उसी भावनाओं की कमजोरी ने, उसी हमारे अपने हार्दिक नहीं हो पाने ने। और उस दिन जब सब सुबह जागे तो सबने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने और उतरने के निशान हैं, और बाहर जो मंदिर का परिसर है उसकी धूल और रेती में रथ के आने और वापस जाने के भी निशान हैं। अब सब माथा पीट पीट के रो रहे हैं कि देवता तो आकर के दर्शन देने के लिए आया था और वापस लौट गया, हम सोते ही रह गए। तैयारी सब की थी हमने लेकिन मन तैयार नहीं था, तो सारी तैयारी व्यर्थ है। पूजा मैंने बहुत की है लेकिन सचमुच मैंने भगवान का आवाहन किया हो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। प्रार्थना जरूर मैंने की है लेकिन कोई भगवान होता है इस पर मैंने विश्वास कभी नहीं किया। तब फिर मेरे किए गए सारे काम जो कि अच्छे मान के मैंने किए थे, हार्दिकता नहीं होने और भावनात्मकता नहीं होने की वजह से वे पूरे नहीं हो पाए, उनका आनंद मुझे नहीं मिला। मेरे ख्याल से मैंने ईमानदारी से अपनी बात कही है, अब सिर्फ इतना और है शेष कि जो भी हम करें उसे ईमानदारी से करें, हार्दिक होकर करें, भावनात्मक होकर करें और उस काम का आनंद लें। ये मान के चलें कि मुझे इस काम को करना ही मेरा कर्तव्य है और इसके बाद मुझे क्या मिलेगा उसका फल नहीं, मुझे तो तुरंत ही उससे आनंद मिल गया, इससे बड़ा फल क्या हो सकता है। इसी भावना के साथ कि अब हम आने वाले दिनों में स्वपर कल्याण के काम ही करेंगे और जो भी काम करेंगे स्वपर कल्याण का उसको बहुत हार्दिकता से करेंगे ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें, हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है।